मंत्र संख्या 9। अंधंतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायं रताः। अन्वय। ये अविद्याम् उपासते ते अंधतमः प्रविशन्ति ये उ विद्यायां रताः ते ततः भूयः तमः इव प्रविशन्ति। पद अर्थ। ये अर्थात जो व्यक्ति अविद्याम अविद्या अर्थात कर्म की उपासते उपासना करते हैं, अंधतमः घोर अंधकार में अज्ञान में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं प्रविष्ट होती हैं। ये जो उ केवल विद्यायाम ज्ञान में विद्या में रताह लीन हैं लगे हुए हैं अनुरक्त हैं ते वे ततः उससे भूयः अधिक तमः अंधकार में या अज्ञान में इव मानो। भाव अर्थ। जो मनुष्य केवल कर्म या अविद्या की ही उपासना करते हैं वे अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान या विद्या की उपासना में लगे हुए होते हैं वे तो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस संसार में मनुष्य के समक्ष दो मार्ग हैं, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। सांसारिक कामनाओं से युक्त मनुष्य कर्म मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल ज्ञान मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। इस मंत्र में इन दोनों मार्गों में किस एक मार्ग का आश्रय लेने का निषेध किया गया है? वस्तुतः सिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल एक ही मार्ग श्रेयस्कर नहीं है, अपितु दोनों मार्गों का समन्वित आश्रय करना चाहिए। जैसे स्वयं भोजन बनाकर क्षुधा शांत करने वाले मनुष्य को चूल्हे में अग्नि जलाने की विधि और पाकशास्त्र का ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार कर्मोपासना और ज्ञानोपासना दोनों मनुष्य के अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने हेतु श्रेयस्कर हैं। यदि क्षुधार्थी को केवल अग्नि ही जलाने आता है तो भोजन बनाते नहीं आता, अथवा केवल भोजन बनाने ही आता है तो वह दोनों ही स्थितियों में अभीष्ट सिद्ध नहीं कर सकता। अतएव दोनों ही प्रक्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए यहाँ एक मार्ग में प्रवृत्त होने वाले की निंदा करते हुए उसके अधःपतन का वर्णन किया गया है। टिप्पणी। इस मंत्र में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या नाम से तथा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक में विभिन्न भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के साधन कर्म को अविद्या नाम से व्यवहृत किया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान आदि कर्म को करने के कारण तत्फल स्वरूप ऐहिक सुखोपभोग करते हैं तथा परब्रह्म की उपासना से रहित होकर आजीवन विविध तपों से संतप्त होते हैं, दूसरे प्रकार के वे मनुष्य जो मिथ्या ज्ञानी बनकर करणीय कर्मों का परित्याग कर देते हैं और अपने मिथ्या ज्ञान का आरोप कर अशुभ कर्म करने लगते हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञानाभिमानी लोग उनसे भी अधिक घोर नरकों की यातनाएं सहते हैं। स्वामी शंकराचार्य जी ने अविद्या का अर्थ अग्निहोत्र आदि कर्म किया है एवं कर्म को विद्या आत्मज्ञान का विरोधी बतलाया है, इसलिए उसे अविद्या कहते हैं। किंतु यदि यह अर्थ स्वीकार कर लिया जाए तो ज्ञान और कर्म का विरोध स्वीकार करना होगा। मंत्र का यह अर्थ पूर्वापर संबंध से भी ठीक नहीं प्रतीत होता। प्रथम मंत्र में ईश और जगत अर्थात पुरुष एवं प्रकृति दो मूल तत्वों का विवेचन किया गया है। पुरुष तत्व को ईश आत्मा स्वयंभू कवि मनीषी आदि नामों से अभिहित किया गया है। ईश तत्व जगत के कणकण में विद्यमान है, वही आत्मा है वही ब्रह्म है। उसके जानने की विद्या को आत्मविद्या ब्रह्म विद्या कहते हैं। जिस सृष्टि में वह ओतप्रोत है उसका ज्ञान भी आवश्यक है। सृष्टि विषय ज्ञान को अविद्या कहा जाता है। आत्मा का ज्ञान विद्या है और आत्मा से भिन्न अनात्मा अर्थात सृष्टि जगत का ज्ञान भौतिक ज्ञान अविद्या है। इस मंत्र में विद्या और अविद्या दोनों के ज्ञान प्राप्त करने का संकेत है केवल एक ही प्रकार के ज्ञान में रत रहने का निषेध किया गया है। अतएव परम कल्याण की प्राप्ति के लिए विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान समान रूप से आवश्यक है। यदि कोई एक ही में लीन रहकर दूसरे की उपेक्षा करेगा तो उसकी अवनति अवश्यमेव होगी। तैत्तरीयोपनिषद में ऐसा कहा गया है कि अन्नम वै ब्रह्मा, अन्न वै प्राणा, अन्नम वै आत्मा, अन्नम बाहु कुवीत, अन्नम न निन्धात। ब्रह्म की उपासना के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति असंभव ही है। इसलिए जो सृष्टि विद्या का तिरस्कार कर केवल आत्मविद्या में रत रहते हैं, वे सृष्टि के उपासकों की अपेक्षा अधिक घोर अंधकार में जाते हैं, अर्थात उनके लोक और परलोक दोनों नष्ट होते हैं, क्योंकि उनको न शारीरिक सुख मिलता है और न मन को शांति ही मिलती है।